ओम शांति। नव सृष्टि की रचना ईश्वर का सर्वोत्तम कर्तव्य है और इसके लिए वो कुछ बेशकीमती आत्मरूपी रत्नों का सृजन करके उन्हें दिव्य गुणों से तराशते हैं ताकि दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल सेट हो सके। ऐसे ही दिव्य गुणों की प्रतिमूर्ति आदरणीय चक्रधारी दीदी जी हमारे समक्ष हैं। हम आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। स्वाहा किया खुद को इन परवानों ने बड़े फख्र से, इनकी खूबियों को हम क्या बयां करें। लिखी जाएगी जब कहानी इनके समर्पण की तो इतिहास भी खुद को दौलतमंद पाएगा, इतिहास भी खुद को दौलतमंद पाएगा। आपका जन्म 18 अगस्त 1942 को अविभाजित भारत के लाहौर में हुआ। दिल्ली के आईपी कॉलेज से आपने राजनीतिक शास्त्र में स्नातक किया। उसके बाद सन 1960 में आदरणीय गुलजार दादी जी और जानकी दादी जी की प्रेरणा पाकर अपना हाथ शिव बाबा के हाथों में सौंप दिया और अनवरत सेवाओं में समर्पित हो गईं। साकार मम्मा बाबा की पालना में पली आदरणीय दीदी जी विश्व के प्रथम सेवा केंद्र कमलानगर में वरिष्ठ भ्राता जगदीश जी के अंग संग रहकर ईश्वरीय सेवाओं को नया आयाम देती रहीं। प्राण प्यारे बाप दादा ने रशिया एवं बाल्टिक देशों की सेवाओं के लिए आपको सूत्रधार बनाया। वर्तमान में आप दिल्ली जोन की मैनेजिंग कोर कमेटी के आधार स्तंभों में से एक हैं और शक्तिनगर तथा उससे संबंधित सेवा केंद्रों की निदेशिका हैं। आप ब्रह्मा कुमारी इसके विमेन विंग की चेयरपर्सन हैं। आज हम आपके मुखारविंद से सुनेंगे, विषय है श्रेष्ठ योगी तपस्वी जीवन की गहराई। आदरणीय दीदी जी,
ओम शांति। आज प्रातः के महावाक्य प्यारे बाबा के मानस पटल पर मेरे घूम रहे थे और बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही कि बच्चे लापरवाही ना करना, कहीं पश्चाताप ना करना पड़ जाए। वह भी समय आता है जब बच्चों को बाबा उन्हीं के कर्तव्यों की स्मृति स्पष्ट करते हुए तभी उनको श्रेष्ठ और सजा का भागी बनाते। हम सब चाहते हैं कि हमारा अंतिम परिणाम बहुत सुंदर निकले, जो हमें कभी किसी बात का पश्चाताप न करना पड़े। तो शायद कभी मेरी ये बात किसी ने सुनी होगी, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताना चाहती हूं कि पश्चाताप किस प्रकार आत्माएं करती हैं। जो मेरे आंखों देखा दृश्य है, अनुभव किया है। जब साकार बाबा प्रथम सेवा केंद्र दिल्ली कमला नगर में खुला तो यही एक वो स्थल था जहां सब दादियों ने समय प्रति समय वहां आकर पालना और परवरिश दी और प्यारे बाबा और मामा भी उस सेवा केंद्र पर रहे। वो सेवा केंद्र ग्राउंड फ्लोर में नहीं था, किराए का लिया हुआ मकान था और फर्स्ट फ्लोर में काफी सीढ़ियां थी, चढ़कर ही ऊपर आना होता था। बाबा भी वहां आए, मामा भी वहां आए, लेकिन उस समय की बहनों को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि पुनः बाबा इसी छोटे से भवन में आए और इतनी सीढ़ियां ऊपर चढ़े। तो कुछ आने वाली अनुभूतियां करने वाली आत्माएं, जिनमें से एक सरदार जी की पत्नी थी। सरदार जी ज्ञान में नहीं आते थे, लेकिन उनकी पत्नी ज्ञान में आती थी। तो उनका बंगला बड़ा था और बिल्कुल कमला नगर के नजदीक ही था। तो उनसे कहा गया कि अगर बाबा आपके घर में आए तो आप कैसा समझते हो। घर फ्री था लेकिन पति ज्ञान में नहीं चलता था। तो कहा क्यों नहीं, तो पति से पूछा और पति संतुष्ट हुए, क्यों नहीं, जरूर आए। तो बाबा उनके निमंत्रण पर फिर उन्हीं के घर में बाबा को ठहराया गया। स्वाभाविक है, कोई के घर में मेहमान आ जाए तो उसका आदर सत्कार एक सिखी जीवन में बहुत भावना रखता है। तो वे कभी भी बाबा की क्लास मिस नहीं करते थे और क्लास में जाकर आगे आगे बैठते थे, सुनते थे जितना भी समझ में आता होगा। लेकिन एक दिन उनके मन में कोई विचार आया होगा तो उन्होंने बाबा के कमरे में अकेले में चले गए और जाकर कहा कि बाबा मुझे आपको अपनी एक बात सुनानी है, लेकिन कृपया मुझे उस बात के लिए मना नहीं करना, लेकिन मैं आपको बताना जरूर चाहता हूं। आप कंडीशन भी रख दे कि मना नहीं करना। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्चे बोलो। तो उन्होंने अपने अनुभूतियां जो उनके जीवन में थी, उन्होंने एक बात कही कि मैं रात को सोने से पूर्व 4 चम्मच लेता हूं। वो आप समझ सकते होंगे किस चीज के चम्मच हैं। कोई नशे की चीज ही होगी जिसको शराब का रूप ही कहते हैं। तो कहा मैं 12 साल का था तब से ही लेता हूं और आज मैं इतना बुजुर्ग हो गया, मैं छोड़ नहीं सकूंगा, मुझे मना नहीं करना। बाबा ने तब भी कहा बच्चे विश्व की बादशाही को ठुकरा दोगे और 4 चम्मच नहीं छोड़ोगे, ये तुम्हारे ऊपर है। बाप तो चाहता है कि मेरा बच्चा विश्व का मालिक बन जाए। लेकिन उसने कहा बाबा मैंने कहा था ना मुझे मना नहीं करना, मैं बताना जरूर चाहता हूं। चलो कहानी हो गई, बाबा भी रहा और चला भी गया। और वे आत्माएं उस समय ईश्वरी यज्ञ में जबकि आवश्यकता का समय था बहुत सहयोगी बने और हर प्रकार से यज्ञ में सहयोग देते रहे। बुजुर्ग थे, जब शरीर छोड़ दिया तो उनकी पत्नी उनके निमित्त भोग माउंट आबू में ही लगवाने के लिए आती थी और बड़े प्यार से बाबा मामा भोग स्वीकार करते थे। तो जब उनको दूसरा वर्ष हुआ, क्योंकि उससे पूर्व मैं उनके पास नहीं थी, मैं जानती भी नहीं थी, मुझे गुलजार दादी जी भी कमला नगर में रहते थे, उन्होंने कहा कि चक्रधरी आप इनको लेकर माउंट आबू में जाओ और ये भोग स्वीकार कराने के लिए प्रतिवर्ष जाना चाहती हैं। तो मैं उस माता को लेकर माउंट आबू चली गई। भोग का समय था, 12 बजे के टाइम बाबा भोग लगाते थे। तो ऐसे बाबा और मम्मा बैठे थे जहां ईशु दादी का ऑफिस है, छोटा सा स्थल था, इसी को हॉल कहते थे। बाबा मम्मा बैठे, सामने संदेशी बैठी और इस साइड में कोई 7-8 बहनें थी यहाँ कोई 5-7 भाई थे, बस इतनी ही सभा थी उस समय, जहाँ सरदार जी के निमित्त उनकी पत्नी उनको भोग लगाने के लिए आई और संदेशी ट्रांस में गई, क्योंकि पहले संदेशियां ही भोग लगाती थी। ये तो बाद में बाबा ने मना किया कि अब तुम सब दिव्य दृष्टि प्राप्त मेरे ब्राह्मण बच्चे हो, दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि के साक्षात्कार साक्षात तुम बच्चों को बाप की पहचान से मिल चुके हैं। तो सेवा केंद्रों में अधिकतर भोग बहने ही योग में लगाती हैं, लेकिन उस समय संदेशी ही भोग लगाती थी। तो संदेशी सामने बैठी भोग में गई और कुछ क्षणों में ही वो वापिस आ गई। बहुत जल्दी जब वापिस आई तो ऐसा प्रतीत हुआ कोई बात है। तो उसने आते ही बाबा मामा को कहा कि आलमैटी ने कहा है कि मेरा ये बच्चा देसी घी ही खाता है, किसी अन्य प्रकार का तेल या कोई ऐसी चीज में बना हुआ भोजन ये बच्चा स्वीकार नहीं करता है। इसलिए बाबा वतन में देसी घी का बना हुआ भोग ही इसे स्वीकार कराएंगे। ये था उसके प्रति रिगार्ड और स्नेह। बाबा ने भोली दादी जो भंडारा संभालती थी उन्हें आज्ञा दी कि बच्ची जल्दी से जल्दी थोड़ा सा भोग, इतना सा हलवा बनाना था, इतने से आलू थोड़े पूरी जो भी बनना था, बाबा ने कहा अच्छे घी में मेरे बच्चे के लिए बना के लाओ। तो मैं समझती हूँ 20 मिनट के अंदर ही उसने ऐसे 2-3 जगह पर इतना हलवा आलू पूरी जो भी है बना करके और भोग की थाली लेकर आ गई। भोग रखा, फिर गीत चलता है, चल उड़ जा रहे पंछी अब ये देश हुआ बेगाना। फिर पंछी ट्रांस में गया, भोग लगाया, वतन में जो भी स्वीकार कराना था कराया। उस समय जाने वाली आत्माएं कई बार संदेशी तन में इमर्ज होती थी, कभी कभी परिवार से मिलती थी, दृष्टि लेती थी, कभी कोई 2 शब्द बोल भी जाती थी, ऐसा सिस्टम चलता था। ये सब खेल पाल बाबा ने कहे हुए हैं, ये सब अब तो बंद हो चुके हैं, लेकिन उस समय वो सरदार की आत्मा संदेशी के तन में आई और जो ही बाबा की तरफ उसने ऐसे करके देखा तो देखते ही उसके आंखों से अश्रु धारा इस कदर बह रही थी जैसे सुनते हैं कि झड़ी लग गई हो, ऐसे मोटे मोटे आंसू उसकी आंखों से गिरते चले जाए। तो बाबा जाने या वो बच्चा जाने, और मैं भी नई थी, मुझे भी कुछ मालूम नहीं था। तो बाबा ने उसको रोता हुआ देखकर अपने पॉकेट से रुमाल निकाला, उसकी आंखें पोंछी, लेकिन उसको क्या कहा, बच्चे अब कुछ हो नहीं सकता, जो होना था सो हो गया, अब रोने से कोई फायदा नहीं। प्यार भी कर रहा है, गले भी लगा रहा है, लेकिन साथ संतावना देते हुए स्पष्ट भी कह रहा है कि अब रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था सो हो गया, अब बच्चे नहीं रो, चुप हो जाओ। बड़ा प्यार किया बाबा ने, लेकिन एक शब्द भी ये नहीं कहा अच्छा अब क्षमा कर देता हूं, नहीं। तो मैं ये बात इसलिए सुनाई कि रेस्पेक्ट और स्नेह जो उसकी करनी थी उसका बाबा ने रिटर्न दिया, उसको रेस्पेक्ट से पुनः भोग बनाकर स्पेशल वतन में खिलाया गया और उस आत्मा को इमर्ज किया ताकि सबसे मिल ले। लेकिन उसको जो प्रायश्चित था, जो उसने बाबा की आज्ञा को नहीं माना, जबकि बाबा ने कहा था कि 4 चम्मच के बदले क्या तुम विश्व की बादशाही को गवा दोगे, तब भी यही शब्द कहा, बाबा मुझे, मैंने कहा था ना मना नहीं करना। तब बाबा ने पुनः रिवाइज कराया, बच्चे अब क्यों रोते हो, रोने से कुछ नहीं होगा बच्चे, ऐसा नहीं उसको कुछ रियलाइज करा रहे हो, लेकिन उसको केवल स्नेह और प्यार से संतावना दे रहे थे और वो आंसू बहा रहे थे। तो बाबा ने उनको गले लगाया, तो जो रिगार्ड सम्मान उसका रिटर्न देना था वो भी बाबा ने दिया, लेकिन जो उसकी कर्म की करनी थी उसके भी सूचना, उसके प्रति भी जो पश्चाताप के आंसू बहा रही थी आत्मा, वो भी बाबा ने सुना दी। तो वो समय ऐसा था जब बाबा इस प्रकार के एग्जाम्पल से बच्चों को, बच्चों की कमी और कमजोरी की सूचना भी देते थे और बच्चों को सचेत भी करते थे ताकि अन्य बच्चे देख करके सचेत हो जाए। धीरे धीरे तो ज्ञान की इतनी स्पष्टता हो गई कि अब बच्चे अच्छाई और बुराई को अच्छी तरह समझ रहे हैं। इसलिए बाबा का आज भी महावाक्यों में था, बच्चे याद में कभी ढीले नहीं हो जाना, क्योंकि योग ही एकमात्र साधन है जिससे आपके जन्म जन्मांतर के संस्कारों का परिवर्तन आएगा और किए हुए विकर्मी खाते स्वच्छ होंगे। ये बाबा बच्चों को समय प्रति समय स्मृति दिलाते हैं। और बाबा के बच्चे जो ज्ञान में चल रहे हैं, चाहे वे 4 वर्ष से चलते या 40 वर्ष से चलते, हर एक के जीवन में श्रेष्ठता और दिव्यता सब चाहते हमारे जीवन में आए, अगर वो ज्ञान में सही चल रहे हैं तो। लेकिन कई संस्कार ऐसे हैं जो हमारे ज्ञान सुनने से, समझ के आधार से हमारे परिवर्तित हो जाते, वो सहज ही परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें परिवर्तन करने में टाइम नहीं लगता। लेकिन कई संस्कार जो बार बार किए गए विकार युक्त कर्मों द्वारा, रिपीटेड एक्शंस के द्वारा बने हुए स्वभाव या संस्कारों के रूप में हम में आ चुके होते हैं, वे संस्कार हमारे कई बार भस्म न होने के कारण, कुछ परिस्थितियों के कारण, ज्ञान के अध्ययन के कारण दबे रह जाते हैं, लेकिन कोई समय पुनः वो जागृत हो जाते। और कई बार ज्ञानी और योगी बच्चे अपने उन संस्कारों को पुनः जागृत हुआ देखकर स्वयं को उन्हें रियलाइज होता है, कितने लंबे समय से हम ज्ञान में चल रहे हैं, अभी तक हमारे ये संस्कार परिवर्तित क्यों नहीं हो रहे। लेकिन समझ सकते हो, ज्ञान का मनन है, चिंतन, ये एक प्रकार है। ज्ञान से रू रिहान है, ये योग का दूसरा प्रकार है। लेकिन ज्ञान से बीज रूप स्थिति में स्थित होना, ये योग की फाइनल स्टेज। जब तक हम बीज रूप स्थिति में स्थित नहीं होते, तब तक कोई संस्कार जो बड़े गहरे संस्कार बन चुके हैं, जो भस्म नहीं हुए लेकिन दब जाते हैं, वो समय प्रति समय उदय हो जाते हैं। अगर हमें स्वयं को नहीं पता चलता तो हमारे संबंध संपर्क वाले कभी कभी हमको सचेत करते हैं कि अभी तक आपका ये स्वभाव ठीक नहीं हुआ, चाहे हमने उसको नोटिस नहीं किया, लेकिन कोई अन्य मेरे स्वभाव को नोट करता है। कई बार हम स्वीकार करते, कभी हम स्वीकार नहीं करते, ये समझते हैं कोई ना कोई स्वभाव तो सब में है, मेरे में ही थोड़ी है, लेकिन मुझे बदलना है, मुझे देवता बनना है, मुझे योग युक्त बन अपने विकर्मों से स्वयं को मुक्ति पानी है, ये मेरा संकल्प है। तो बाबा बच्चों को कहते, बच्चे ख्याल रखना, अगर किसी सोने में खाद मिल जाती है, अलाय हो जाती है और सोने को शुद्ध करना चाहते हैं, तो पहले तो मैंने दृश्य जो देखा हुआ है, सुनार की छोटी सी अंगीठी होती थी और धोकनी हाथ में पकड़ता और एक बर्तन में वो सोना डालता और धोकनी से उस आंच के सेक को उतनी मात्रा में उस बर्तन की तरफ देता जिससे वो सोने की खाद उस सोने से अलग हट जाए और सच्चा सोना अलग हो जाए। जब तक उतनी ओस्त में उतनी मात्रा में वो हीट सोने को नहीं मिलती है तो खाद अलग हट करके सोना निखर आए, अलग हट जाए, ये नहीं हो पाए। ठीक इसी प्रकार कभी कभी पानी शुद्ध नहीं होता, क्योंकि आजकल बड़ा गहरा चला गया पानी और गटर भी आज बड़े गहरे गहरे साथ बन गए हैं, तो कभी गटर का पानी पीने के पानी के साथ मिल जाता है और उस समय एक आज्ञा मिलती है कि पानी को बॉयल करके उबाल कर पीजिए क्योंकि पानी शुद्ध नहीं है। पानी को उबाल कर पीना और पानी को गर्म करके पीना, इसमें अंतर है। अगर आपने पानी के हल्की हल्की आंच के सेक पर पानी का बॉयल होने का पतीला रख दिया, हल्की हल्की आंच पर पानी आपका बहुत सुंदर बॉयल नहीं लेकिन गर्म पूरा हो गया लेकिन उबला नहीं, वो पानी आपका शुद्ध नहीं होगा। शुद्ध करने के लिए पानी को उबालना जरूरी है। ठीक इसी तरह जो संस्कार आत्मा में गहरे चले गए हैं, उन गहरे संस्कारों को निकालने के लिए क्या करना होगा। मान लीजिए कांटा मुझे हाथ में चुभ गया है, मैं सुई से उस कांटे को निकालती हूं और अभी ऊपर ही ऊपर कांटा, मैंने ऊपर से डाली सुई और ऊपर से कांटे को निकाल लिया, लेकिन अगर वो कांटा काफी गहरा चला गया है तो मुझे सुई को उस कांटे से ज्यादा गहरा अंदर करना पड़ेगा ताकि मैं उस कांटे को वहां से निकाल सकूं। ठीक इसी प्रकार आत्मा के कुछ संस्कार ऐसे हैं जो ज्ञान से दैवी संस्कार, दैवी परिवार के संगठन से या कुछ हल्की सल्की ज्ञान की चिंतन मनन करने से भी हमारे संस्कारों में परिवर्तन आता है, लेकिन कुछ संस्कार जो बड़े बार बार किए गए कर्मों के आधार से बने हुए होते हैं वे संस्कार ऐसे परिवर्तित नहीं होते। उनको परिवर्तन करने के लिए हमें केवल मनन चिंतन की जरूरत नहीं है, केवल मात्र रू रिहान नहीं है, लेकिन आत्मा को परमात्मा की स्मृति और स्वरूप में एकाग्रता की आवश्यकता होती है। क्या मतलब है उसका? इस बात को जानने के लिए मैंने जहां तक देखा हमें कुछ सावधानियां रखने की जरूरत होती है। ऐसे साधारण साधारण जीवन जी के हम उठे तो शिव बाबा कह दिया, बैठे तो शिव बाबा कर दिया, या 5 मिनट योग कर लिया, 10 मिनट याद कर लिया, इससे नहीं कार्य बनने वाला। उसके लिए कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिससे हमारे मनोस्थिति में एकाग्रता बने, मन जल्दी से जल्दी इधर से उधर ना भटके। उसके लिए किन बातों की सावधानियां हम सबको अपने पास रखनी चाहिए ताकि हम योग के गहरे अनुभव प्राप्त करके पुराने गहरे संस्कारों से मुक्ति प्राप्त कर सके, जिसमें अनुभव कहता है कि सबसे पहला है एकांतवासी, जहां कोई काम नहीं है, कोई बात नहीं है, इधर देखा उधर देखा, इसकी सुनी उसकी सुनी, और आप समझते हो जो देखा सुना वो मानस पटल पर कई बार रह जाता है। और जब हम याद में बैठते हैं हमारी याद की स्थिति एकाग्र नहीं हो पाती, क्योंकि ये चीजें एकाग्रता में विघ्न डालती। जितना हो सके एकांतवासी रहने का ख्याल रखें। जब काम नहीं है, किसी से व्यवहार की जरूरत नहीं है, तो वहां से थोड़ा इधर उधर हट जाए। कईयों को एकांत अच्छा ही नहीं लगता, कहते मुझे तो एकांत में बहुत कुछ अखड़ता है। और हमारे दादी जानकी जी कहा करते थे, एकांत मिला तो अल्लाह मिला। तो अपनी स्थिति को एकाग्र बनाए रखने के लिए हमें कुछ समय एकांत में बिताना बहुत जरूरी है, ताकि एक मैं एक बाबा और कोई मुझे दृश्य प्राणी बातें याद ना आए, मैं उस एक की याद में स्थिर हो सकूं। और दूसरा ध्यान रखने की जरूरत है, हमारी एकाग्रता बने। अब मान लीजिए मैं याद में बैठी, इतने में आया चलो आज के महावाक्यों का मनन चिंतन करूं, बाबा ने क्या सुनाया। अभी मैं मनन चिंतन करने ही लगी तो फिर ख्याल आता है बाबा से रू रिहान कर लेते। फिर हमने रू रिहान शुरू की, रू रिहान चंद क्षण करके, फिर मैं समझती हूं आत्मा तो बीज रूप है, इसमें स्थिर होना चाहिए। तो जल्दी जल्दी अपनी मनस्थिति को बदलने ना दे। जिस स्थिति में स्थित हुए हो, जब तक उसका गहरा अनुभव ना कर लो, तब तक अपनी अवस्था को बदलो नहीं। कि अभी अभी रू रिहान है, अभी अभी विचार सागर मंथन है, अभी अभी बीज रूप है, तो किसी भी स्थिति का सही रूप से अनुभव नहीं किया। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, व्यर्थ में आपने बातचीत नहीं की, लेकिन जो आपकी एकाग्रता की स्थिति बननी चाहिए वो नहीं बन पाए। इस चीज का बहुत ध्यान रखने की, सावधानी बरतने की जरूरत होती। और एक है लक्ष्य, मुझे याद का गहन अनुभव करना है और ईश्वर से सरल संबंधों के अनुभव में आत्मा के बने हुए संस्कारों को समाप्त करना है, ये मेरा लक्ष्य है। और जब किसी का कोई लक्ष्य निर्धारित होता है तो वो उस लक्ष्य को पाने के लिए हर प्रकार का प्रयत्न करता है। अब मान लीजिए किसने लक्ष्य रखा, मुझे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर झंडा लहराना है, उसके सपनों में उसके ख्वाबों में वही दृश्य दिखाई देता है, मैं जा रहा हूं माउंट एवरेस्ट की चोटी पर और झंडा लहरा रहा हूं, और उसका लक्ष्य इतना दृढ़ होता है एक दिन वो झंडा लहरा के आता है, चाहे वो कितनी भी बार असफल हो जाए। हम भी स्वयं को स्वयं पूछें कि हमारे जीवन में ये लक्ष्य पक्का है कि जिस दाता ने मुझे अपनी पहचान दी, मुझे मेरी पहचान दी, मुझे अपने द्वारा क्या प्राप्तियां तुझ आत्मा को हो सकती हैं, इन सब बातों से अवगत कराया, क्या मेरे मन में ये लक्ष्य पक्का हुआ? कैसे दाता से मिलन मनाए बिना, उस प्रभु की समीपता और समानता का अनुभव किए बिना मैं चैन नहीं ले सकती, मुझ आत्मा को प्रतिपल ख्याल रखना है कि चलते फिरते बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, चाहे अलौकिक कार्य है या लौकिक कार्य है, लेकिन बाबा मेरे साथ है, मैं अकेली नहीं हूं। वो मुझे निमित्त बनाकर कार्य कराता है, लेकिन कराने वाला वही है। चाहे हम घर का काम करते हैं या व्यापार या व्यवहार का काम करते हैं, लेकिन हर पर बाबा का साथ है। ये एकाग्रता स्थिति में बनाए रखने के लिए बड़ी सहयोगी चीज है, इसका अटेंशन रखना पड़े। और एक बात है, जहां आपका आकर्षण है, कोशिश करो आकर्षण से स्वयं को मुक्त करो। चाहे वो देह में आकर्षण, देहधारियों में आकर्षण है, देह दुनिया में आकर्षण है, देह के पदार्थों में आकर्षण है, या टेलीफोन के किसी विशेष चीज में आकर्षण। और जो चीज आपको आकर्षित करती है वो आपके मानस पटल पर थोड़ी देर भी बैठती जरूर है। और आप जब योग का ध्यान लगाने लगोगे, मन एकाग्र करने लगोगे, वो आकर्षण आपको पुनः अपनी तरफ आकर्षित करेगा, आपकी मन की एकाग्रता नहीं बनेगी। बहुत ख्याल रखो। अब इस पुरानी दुनिया में रखा क्या है और मिट्टी के देह में क्या चीज है, ये संबंध जहां स्वार्थ है और सब अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं, ये पदार्थ जो नाशवान चीजें हैं, बाबा कहते हैं अब इनसे मन का आकर्षण ना बना लो। ठीक है, जो चीज आवश्यक है वो आवश्यक को इस्तेमाल करना है, जिस संबंध की जरूरत है समय पर उस संबंध से बात करनी या व्यवहार करना है, लेकिन आकर्षण का स्वरूप आपका ना रहे। जब ये आकर्षण नहीं होगा तब आपका लक्ष्य की तरफ आकर्षण होगा और मेरी तरफ आकर्षण होगा, क्योंकि जो प्राप्तियां मेरे से प्राप्त हो सकती हैं वो प्राप्तियां दुनिया के पदार्थ प्राणी और सारे विश्व भर से कहीं से नहीं प्राप्त हो। जो दाता के पास हमारे लिए खजाना है, वो खजाना हमको कोई मानव मात्र, कोई दुनिया का ऐशो इश्रत का साधन नहीं दे सकता। जब हमारे मन में ये निश्चय बैठता है कि वही एक है, तो बाबा हम बच्चों को कहता है कि आकर्षणों से थोड़ा परे हटते जाओ और कोई भी चीज लौकिक देखो तो उसको अलौकिक में बदलो, ताकि आपकी एकाग्रता बने। चलो आपने लाइट देखी तो फौरन देखो हमारी दुनिया, जिस घर से हम दुनिया में आए वो कैसा प्रकाश होगा, जहां चारों तरफ पवित्रता ही पवित्रता है, प्रकाश ही प्रकाश है। और पवित्रता का सागर, वो ज्योति स्वरूप मेरा बाबा कैसा होगा, मेरा निज का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र दिव्य ज्योतिर्मय कैसा दिव्य पावन स्वरूप होगा। देखी तो आपने ज्योति है, प्रकाश खूब लगा हुआ है, लाइट हो रही है, लेकिन आप उसके अलौकिकता में चले। तो जहां तक हो सके हर लौकिक चीज को अलौकिकता में परिवर्तित करने की कोशिश करो। ऐसे नहीं आप कहेंगे वो संस्कार अभी तक क्यों नहीं बीते, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, कितने भी साल हो जाए, जब तक एकाग्रता मनोस्थिति में नहीं बनी, मन उस दाता में एकाग्र नहीं हुआ, जब याद में बैठे उसे एक की धुन में नहीं लगे, तब तक डीप गए हुए संस्कार जो देह अभिमान के वशीभूत बने हुए हैं उनमें परिवर्तन नहीं आ सकता। ऐसी कुछ और भी बात है, मान लीजिए संतुलन हो, जैसा मन हो वही वचन हो वही कर्म। मन कुछ कहता है, वचन कुछ बोलते हो, कर्म कुछ करते हो, फिर कहते हो योग नहीं सही लगता, बैठते तो बहुत है, अभी पूरा अनुभव नहीं होता। ऐसे अनुभव नहीं होंगे, इन अनुभवों के लिए इन चीजों की सावधानियों की बहुत आवश्यकता है। तो मैं ज्यादा नहीं इसमें टाइम लेना चाहती हूँ, तो मैं यही कहूंगी कि योग क्या है। बाबा ने कहा है, योग में मैंने तुम्हें दो बातें कही हैं, एक लॉ है, एक ऑर्डर। लॉ मानकर चलो, ऑर्डर से जीवन को आगे बढ़ाओ। लॉ है योग का, देह सहित देह की पुरानी दुनिया और संबंधों से मन और बुद्धि को हटा करके अपने देही स्वरूप, आत्मिक स्वरूप में मन बुद्धि को एकाग्र करो। ये लॉ है योग में योग युक्त होने का। और ऑर्डर क्या है? जिस ज्योति बिंदु में मन को एकाग्र करना चाहते हो, उस ज्योति बिंदु से आपके सर्व संबंध हो। सर्व प्राप्तियों की वही सैकरीन है। माता पिता बंधु सखा स्वामी सर्वस्व मेरा वही है। वो बिंदु ही नहीं है, लेकिन सर्व गुण, सर्व शक्तियां और सर्व संबंधों का वो सिंधु है। अब मान लीजिए कोई दुनियावी रूप में भी, मानो मिलिट्री में कोई काम करता है और कोई लॉ एंड ऑर्डर होता है, कोई भी गवर्नमेंट का अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं मानता है तो दुनिया में तो सजा आदि मिल जाएगी, इस दुनिया में उन्हें खुशी नहीं रहेगी, हल्कापन नहीं रहेगा, प्रभु जीवन का आनंद नहीं आएगा, और कभी कभी उब जाएगा, थक जाएगा, समझेगा शायद मैं अनुकूली ज्ञान के नहीं हूं, क्योंकि मुझे अभी तक तो इतना अनुभव होता नहीं। ये वास्तव में सही रूप से योग में उपस्थित होते समय लॉ ठीक से माना नहीं, ऑर्डर में चले नहीं, प्राप्ति बड़ी ऊंची चाहते हैं, वो ऊंची प्राप्ति हो नहीं पाती। और दूसरा, योग के समय हमारी बहुत जरूरत है साधना की, एकाग्रता की बहुत जरूरत है। मान लीजिए ध्यान है, इसको एकाग्रता कहो, ध्यान कहो। मैं आपको एक लेटर है, मैं सुना रही हूं, मैं कहती जरा सुनना, देखो क्या लिखते हैं। मैंने पढ़ दिया, आप कहते कोई ऐसी बात तो नहीं है, क्या आप खास ये लेटर हमको सुनाया। अब मुझे मालूम है इसमें बड़ी विशेष बात है। मैं कहती देखो जरा ध्यान से सुनो मेरा लेटर, मैं पढ़ती हूँ फिर से, आप ध्यान से सुनना। अब आपने सब तरफ से ध्यान हटाया और उस लेटर को पूरा एकाग्रता से सुन रहे, और जब वो लाइन आई जिसमें कुछ आश्चर्य था, कुछ भिन्नता थी, तो आपने कहा ओ समझ गए, समझ गए। पहले क्यों नहीं समझा? पहले तो आपने कहा ये तो जनरल सी कॉमन लेटर है, लेकिन जब मैंने कहा ध्यान से सुनो, तो आपने सब तरफ से ध्यान को हटा के उस बात को सुनने में ध्यान लगाया, और सुनते ही आपको ग्रास्प हो गया कि ये बात के लिए दीदी हमको सुना रही, तो आपने फौरन का समझ लिया। तो बाबा भी हम बच्चों को कहता है, बच्चे बात बाप को याद करने की है, लेकिन जब बाप को याद करते हो तो अगर कहीं ना कहीं बुद्धि जाती है, कोई सुनी हुई बातें, कोई आकर्षण करने वाली बातें, कोई किसी से संबंध मोह ममता, कोई दुनिया में कोई अपनापन, इंटरेस्टेड चीजें, बुद्धि तो वहां चली जाती। और जब दाता में मन और बुद्धि की एकाग्रता होनी चाहिए, वो एकाग्रता की अनुभूति हो नहीं पाती, क्योंकि ध्यान का योग से बड़ा गहरा संबंध। आप देखिए एक आर्टिस्ट है, हम भी घूमने गए, हमारे साथ वो आर्टिस्ट भी घूमने गया, बहुत सुंदर बगीचा देखा, उसमें नदी थी, किश्ती चल रही थी, सब कुछ था। वो घर में आके कहते भी आपने देखा वो बगीचा क्या सुंदर था। हम कहते सुंदर तो था बाकी क्या सुंदर था। कहते नहीं भी बहुत ही सुंदर था, मैंने तो वर्ल्ड में बड़े बगीचे देखे लेकिन ऐसा बगीचा मैंने नहीं देखा। अब वो बगीचा आपका एक पेपर पर आर्टिस्ट होने के कारण वो पेपर पर बगीचा बनाता है, और बगीचे में कहां एक पत्थर पड़ा हुआ है, कहां एक झाड़ी है, कहां किस प्रकार का फूल है, वो सारा बगीचा एक कागज पर बना के आपको दिखाता है। मैं कहती हूँ ये पत्थर भी क्या था वहां? कहते हाँ आप देख लीजिए अभी भी जाके, ये सूखी झाड़ी भी वहां थी, हाँ ये भी था। देखा तो मैंने भी है, देखा उसने भी है, लेकिन उसने ध्यान पूर्वक देखा और वो जो देखा वो उसके हृदय में छाप लग गई पूरी। और जब वो पूरी छाप लग गई तो उसने उसे पेपर पर डिपिक्ट ऐसे कर लिया जैसे एक एक चीज उस बगीचे की उसको क्लियर दिखाई दे रही। बाबा भी हम बच्चों को क्या कहता है, मैं ज्योति बिंदु चमकता हुआ एक दिव्य सितारे के समान, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, इस प्रकाश के मध्य तू आत्मा दिव्य सितारा विराजमान हो जा। मैं ज्योति बिंदु ही नहीं सर्व गुण और सर्व शक्तियों का सागर, सर्व गुण और सर्व शक्तियां किरणों की भांति चारों तरफ फैल रही हैं। मान लीजिए, मैं ज्यादा वर्णन नहीं करती, मैं बीच में पूरा करती जा रही हूं। तो जब सुन तो सब रहे हैं लेकिन एक है सुनते समय उसके सामने वो पूरा नक्शा जो बाबा ने बताया, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा धाम कैसा है, मेरे गुण क्या है, मेरी शक्तियां क्या है, तो उस समय क्या है, तू किस स्वरूप में मेरे सन्मुख बैठा है, वो सारी चीजें एक आर्टिस्ट की न्यायी हमारे मन और बुद्धि में इतनी क्लियर हो जाए कि हम इस स्थिति से जब उठे भी तो ऐसे जा रहे हैं जैसे कोई दिव्य मूर्तियां कहीं से उठ करके धीरे धीरे जा रहे। यहां तो योग हुआ, ऐसे लगता है काम पूरा हुआ। हाँ तू भी आ जा, वे भी आ जाए, तू भी बैठ जा। मैं, अरे ये योग लगा के हटे हैं क्या? मैं इसका एक एग्जाम्पल देती हूं। ऐसी योग याद स्थित स्थिति जो होती है वो बड़ी न्यारी स्थिति होती, उसके बाद वो चित्र इस कदर आपके सामने चित्रित है, वो अनुभव इस कदर आपको अनुभवी बना रहा है कि आपको उस अवस्था से उठने पर भी उस अवस्था का अनुभव हो रहा है, वो अनुभव आप छोड़ना नहीं चाह रहे। मैं और एक बहन, हम जगदीश भ्राता जी भी थे, लंदन था या अमेरिका मुझे नहीं याद, एक जगह पर हम गए तो वहां एक जगह पर लिखा हुआ था रिलैक्सेशन सेंटर। अब रिलैक्सेशन सेंटर मानो हल्का रहो, भूल जाओ सब कुछ, ऐसा एक सेंटर बना हुआ था। और लोग ऑफिस से आ रहे थे, ब्रीफ केस हाथ में पकड़े हुए थे, लेकिन बड़ी जल्दी जल्दी टिकट लेते थे और अंदर जा रहे थे। तो जगदीश प्राता जी को ऐसी चीज जानने या देखने के लिए अच्छी लगती थी ताकि हम किसी को स्पष्ट कर सके कि सत्यता क्या है। तो कहा कि चलो बहनों आज हम भी रिलैक्सेशन सेंटर में देखें यहाँ क्या होता है। तो मैंने वहां जो देखा, तो जब रिलैक्सेशन सेंटर फुल भर गया, एकदम एक घंटा सा जैसे बजता है, घंटा बजा इसका मतलब अब सेशन शुरू होने जा रहा है। सभी को कहा गया अपने ब्रीफ केस वगैरह जो भी हाथ में सब नीचे रख दीजिए और अपने चेयर पर साइलेंस में बैठिए। उन्होंने लाइट हॉल की बंद कर दी और केवल लाइट स्टेज की थी, और कुछ समय के बाद स्टेज की लाइट भी धीरे धीरे मध्यम करके जो ब्लैक बोर्ड रखा हुआ था उस ब्लैक बोर्ड पर केवल लाइट आ गई। बस सभी को अटेंशन दिलाया कि आप सभी अब इस तरफ देखिए, तो सब ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहे थे। तो वो जो कराने वाले ट्रेनिंग देने वाले थे उन्होंने उस ब्लैक बोर्ड पर ऐसे करके एक गोल चक्रा सा बना दिया और लोगों को ध्यान खिंचवाया कि सब तरफ से ध्यान को हटाकर केवल मात्र इस चक्र को ही देखना है आपको, बस ना बाहर देखना है ना अंदर देखना, चक्र को ही देखो। तो सभी ऐसे ही बैठे हुए थे। धीरे धीरे वो थोड़ा सा बोल रहे थे, लेकिन सभी को, क्योंकि सभी पैसे खर्च के लक्ष्य के लिए आए हुए थे, तो उनकी आज्ञा के अनुकूल वैसे ही सब देख रहे थे। 5-7 मिनट किया होगा ऐसा। फिर उसके बाद उन्होंने फिर धीरे धीरे उस चक्र के बीच में एक और चक्र बनाए, फिर कहा, विड्रॉ योर अटेंशन फ्रॉम दिस, मानो इस साइकिल चक्र से अपने ध्यान को हटाइए, इस चक्र में अपने ध्यान को लगाइए, अब केवल मात्र इसी चक्र को देखना है, ना बाहर देखना है ना अंदर देखना। फिर लोग काफी देर के लिए इसी स्थिति में बैठे थे। हाल में पिन ड्रॉप साइलेंस थी, सब ऐसे देखते रहे। फिर उन्होंने तीसरा चक्र बनाया, फिर लोगों का ध्यान तीसरे चक्र, वो छोटा चक्र होता जा रहा था, सब उसको देख रहे थे। सब कुछ जैसे मुद्री में कोई थकावट, कोई बात, कोई चीज, सब उस समय भूल गए, कुछ नहीं याद था उस समय। हम भी उसके साथ साथ पूरा करके कोशिश कर रहे थे पूरी। फिर लास्ट में उन्होंने बीच में एक पॉइंट लगा कि अभी सब तरफ से ध्यान हटा के अभी इधर ध्यान लगा। सभी ऐसे बैठे, बहुत शांति। फिर घंटा बजा, धीरे धीरे व्हाइट लाइट स्टेज पर हो गई। मैंने ये ड्रिल नहीं कराई, मैं तो बता रही हूं आपको। फिर वो व्हाइट लाइट हुई, फिर हॉल में व्हाइट लाइट हुई, दैट्स ऑल एंड सब खड़े हो गए और सब जा रहे थे बाहर। ऐसे जा रहे थे जैसे कि बूट की भी उनकी आवाज नहीं आ रही थी, बहुत धीमे धीमे सब शांत हो गए। ऐसे हमारी तरह नहीं हल्ला करते जा रहे हो, धक्का मुक्का भी कर ले, कुछ नहीं, बहुत पूरा हाल भरा तंग। मैं मन में सोच रही हूं, उस समय तो मैंने इतना विचार नहीं चलाया, तो मैं मन में सोचती हूं कि हमारा बाबा ये नहीं कहता ये साइकिल अब ये साइकिल अब ये साइकिल, लेकिन बाबा भी हमारे ध्यान को सब तरफ से हटा के मेरे में एकाग्र करो कैसे करवाता है। बाबा तो ऑलरेडी करवाता है। क्या कहता है, ये दुनिया पुरानी है बच्चे, ये रौरव नरक हो चुका है, इस दुनिया को जीता नहीं समझो, इसमें कोई सत और सार नहीं है, इसमें मन और बुद्धि नहीं लगाओ, इसमें सब संबंध कौन से हैं, स्वार्थ के हो चुके हैं, देह अभिमान में मनुष्य आ चुके हैं। तो बाबा हमारा ध्यान, पुरानी दुनिया में रहो लेकिन कीचड़ में कमल सम जीवन व्यतीत करो, तुम कमल जैसा जीवन जीना सीखो। बड़ा अच्छा कोई सुना रही थी बहन कि कमल आता तो कीचड़ में है लेकिन चढ़ता देवताओं के सिर पर, क्योंकि कमल एक न्यारा और प्यारा है। तो बाबा हमारे जीवन को भी ऐसा ही बनाने के लिए, ये पुरानी दुनिया में रहो लेकिन रहते हुए भी दुनिया को अपने में ना बसा लेना। जो दुनियावी एग्जाम्पल देते हैं, किश्ती पानी में चले तो 10 को ले चलेगी और किश्ती में पानी आ जाए तो सबको डुबो देगी। हम भी ठीक इसी प्रकार दुनिया में रहें, चलें, लेकिन दुनिया को अपने में ना बसा लें, क्योंकि हमें मालूम है ना यहाँ के हैं ना यहाँ सदा रहना है, आए हैं हम सबको एक दिन जाना है। इसलिए दुनिया तो पुरानी है, तमोगुणी है। फिर बाबा हमको क्या कहता है, बच्चे तेरे लिए तो छोटा सा संसार है, ये तो ब्राह्मण संसार ही तेरा संसार, इसमें मम्मा है, बाबा है, ब्राह्मण भाई और बहने हैं, यही तो एक परिवार है तेरा छोटा सा। तू संसार से मन को हटा ले, इस संसार में मन को लगा ले। लेकिन जब देखता है कि मेरे बच्चे किसी की कमजोरी से नफरत करते हैं, किसी के गुण देखकर उस पर फिदा हो जाते हैं, तो फिर बाबा कहता है इन सब को देखते हुए भी कहीं मन को लगा ना लेना, घृणा नफरत ना लाना, मम्मा बाबा को देखना जिनका रिजल्ट शिव बाबा ने अनाउंस किया हुआ, फॉलो मदर एंड फादर। उन्होंने बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में कैसे धारण किया और कितना जीवन को दिव्य और श्रेष्ठ बनाया। हर क्षण हर कर्म करते देखो बाबा क्या ऐसा करता, क्या मम्मा ऐसा कहते। फिर बाबा कहता है मम्मा बाबा को भी बनाने वाला कौन, शिक्षा देने वाला कौन, वो तो मैं ही बाबा। बच्चे सबसे मन को हटा करके मन को एक मेरे में लगा लो। बाबा भी तो हम बच्चों को घेरे 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 से बिंदु पर लाता है, फिर कहते हैं बिंदु में मन नहीं लगाना, लेकिन ये बिंदु नहीं, ये मुझे सर्व प्राप्तियां प्राप्त कराने वाला मेरा दाता पिता है, ये मेरी माता है, मेरा बंधु है, मेरा सखा है, मेरा स्वामी है। दुनिया में जहां संबंध है वहां बुद्धि जाती है, तेरे तो सर्व संबंध मुझ बिंदु स्वरूप से है, क्योंकि तू भी तो बिंदु रूप है, तू भी तो ये नाशवान चोला नहीं है, मैं भी चोला नहीं, तो चलो मेरा और तेरा आओ बच्चे मिलन करे, ऐसा मिलन करे कि मैं नहीं रहा तो तू नहीं रहे, हम दोनों मिलकर एक बनकर बैठ गए। तो अभी टाइम जवाब दे रहा है, अभी हम 3 मिनट के लिए या जो भी टाइम होगा, अगला कार्यक्रम सौगात का है, तो अभी हम कुछ क्षण जो सुना है थोड़ी देर उस अनुभव में बैठे। ये तो जरूरी है कि मन की एकाग्रता जितनी होगी उतना बैठेंगे, नहीं तो मन कभी कहीं जाएगा। लेकिन बार बार याद रखो मैं कौन हूं, चैतन्य हूं, अजर अमर अविनाशी सत्ता, मेरे सर्व संबंध सर्व रिश्ते एक अजर अमर अविनाशी सर्वशक्तिवान प्यारे पिता के साथ। बाबा मैं आपका पुत्र, आपकी शक्ति और शांति रूपी खजाने का अधिकारी, ऐसे अधिकारी पुत्र बन सर्व अधिकार देने वाले दाता पिता की उस ज्योति देश में स्मृति बनाए स्थित होकर 2-3 मिनट के लिए बैठते हैं, फिर नेक्स्ट प्रोग्राम जो होगा वो सुनें।
ओम शांति।
You।